नमस्कार भारत, आज है 9 जुलाई, दिन शनिवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। पाकिस्तान के जाने माने समाज सेवक अब्दुल सत्तार ईदी का 88 वर्ष की आयु में निधन।
इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस सिंगल हैंडेडली बनाई, 1800 के करीब एम्बुलेंसें थी।
डायलस शूटिंग में 5 पुलिस वालों की मौत के बाद यूरोप यात्रा बीच में छोड़कर लौट रहे हैं राष्ट्रपति ओबामा। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के स्थानीय कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत। अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में महात्मा गांधी को किया याद।
महात्मा गांधी मानते थे कि इस भूमि पर एक प्रकार से उनका यहाँ एक नया जन्म हुआ था।
होंगी विंबलडन की खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। पाकिस्तान के जाने माने मानवतावादी समाज सेवी अब्दुल सत्तार ईदी का निधन हो गया है। वो 88 साल के थे। उनकी संस्थान ईदी फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़ी निजी एम्बुलेंस सेवा चलाती है और साथ ही कई प्रकार की मानवीय सेवाएं मुहैया कराती है। औपचारिक शिक्षा न हासिल करने वाले ईदी ने जवानी में ही समाज सेवा शुरू कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले कराची में गरीबों को मुफ्त दवा देने के लिए डिस्पेंसरी खोली थी। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि डेलस में 5 पुलिसकर्मियों की जान लेने और 7 अन्य को गंभीर रूप से घायल करने वाले हमले के पीछे एक ही बंदूकधारी था। हमलावर 25 वर्षीय पूर्व सैनिक मिकाह जॉनसन है। गुरुवार रात प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी के बाद जॉनसन को घेर लिया गया था। बाद में बम से लैस रॉबर्ट को जॉनसन के करीब भेजकर धमाका किया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। डेलस के मेयर माइक रॉलिंग्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें लगता है कि शहर अब सुरक्षित है। डेलस के पुलिस प्रमुख डेविड ब्राउन ने संदिग्ध की मौत के बारे में जानकारी देते हुए बताया।
We saw no other option but to use our bomb robot.
हमारे पास संदिग्ध के नजदीक अपने बम रॉबर्ट के जरिए धमाका करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अन्य विकल्प हमारे जवानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। बम धमाके में संदिग्ध की मौत हो गई है। डेलस में पुलिसकर्मियों पर हमला इस सप्ताह पुलिस के हाथों लुजियाना और मिनेसोटा में मारे गए काले लोगों की याद में आयोजित विरोध प्रदर्शन के अंत में हुआ है। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता रेवरेंड जेसी जैक्सन का कहना है कि मारे गए पुलिसकर्मियों की याद में आंसू बहाए जाने चाहिए, साथ ही काले लोगों के समान अधिकारों के लिए चल रहा आंदोलन भी जारी रहना चाहिए। हंगरी की सरकार का कहना है कि उसने सर्बिया के रास्ते अवैध प्रवासियों के आगमन को पूरी तरह रोकने के लिए सर्बिया से लगे अपनी दक्षिणी सीमा पर 10,000 पुलिसकर्मी और सैनिक तैनात किए हैं। बाल्कन देशों के रास्ते होते हुए हर सप्ताह अभी भी हजारों लोग ऑस्ट्रिया पहुंच रहे हैं। सीमा पर मौजूद बीबीसी संवाददाता के मुताबिक कुछ देश सीमित संख्या में आ रहे लोगों को सीमाएं पार करने देते हैं, लेकिन अब हंगरी का कहना है कि वो अब हर किसी को सीमा पर रोक देगा। सीमा पर अवैध रूप से घुस रहे लोगों को हंगरी से वापस सर्बिया भेजा जाएगा। कोलंबिया में फार्क विद्रोहियों की वरिष्ठ कमांड ने देश के दूरस्थ वन क्षेत्र में मौजूद अपनी गुरिल्ला यूनिटों को भंग करने की धमकी दी है। पश्चिमी क्षेत्र में सक्रिय एक शीर्ष कमांडर ने बयान जारी कर कहा है कि सरकार के साथ 3 साल से जारी शांतिवार्ता की शर्तों को न मानने वाले गुटों को फार्क से अलग होना पड़ेगा। शुक्रवार को एक सरकारी अधिकारी ने कहा था कि दो गुट अपने ठिकानों पर डटे हुए हैं और अवैध खनन और ड्रग तस्करी में लिप्त हैं। राष्ट्रपति हुआन मानुएल सांतोस कह चुके हैं कि जो लड़ाके शांति समझौते को नकार देंगे उनकी जगह या तो जेल है या कब्र। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। पाकिस्तान में गरीबों के मसीहा कहलाने वाले समाजसेवी अब्दुल सत्तार ईदी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो कुछ समय से बीमार चल रहे थे। समाज सेवा के लिए मैग्सेसे और निशाने इम्तियाज जैसे सम्मान से नवाजे गए ईदी साहब ने जीवन भर सेवा व्रत का पालन किया और लोगों के दिलों पर राज किया। उनके द्वारा शुरू किया गया ईदी फाउंडेशन आज लाखों जरूरतमंदों की जिंदगी को बेहतर बनाने की मुहिम में लगा है। ईदी साहब की शख्सियत के बारे में मैंने बात की पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार वसीतुल्लाह खान से।
जो है वो हम जो किसी कहानियों में सुनते आते हैं ना कि लार्जर देन लाइफ लोग भी हुआ करते थे और हम कहते हैं वाह 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 क्या लोग थे, तो ये तो हमारे सामने का एक लार्जर देन लाइफ एक आदमी चल रहा था, फिर रहा था, और इसने سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ہم سے یہ ایکسکیوز چھین لیا کہ چیریٹی ورک کے لیے کوئی پیسہ ہونا چاہیے، کوئی وسائل ہونے چاہیے، کوئی سرکاری سپورٹ ہونی چاہیے. سب فارمولے اس نے ختم کر کے رکھ دیے. مثلا اس نے سوچا پاکستان بننے کے بعد، ظاہر ہے کاٹھی ایوارڈ سے 1947 میں جب آپ آئے یہاں، کیونکہ 1949 میں کپڑا ڈھونے کا کام کرتے تھے، ان کی اپنی دکان بھی نہیں تھی، ایک دکان سے دوسری جگہ کپڑا دھو کے دہاڑی لیتے تھے. اس دوران ایک مزدور جو کپڑا اٹھا رہا ہے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یار انسان بڑا دکھی ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، حالانکہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. تو اس آدمی نے 2300 روپے جوڑ جاڑ کے ایک دکان خریدی اور اس میں اپنا کاروبار کرنے کی بجائے ایک ڈسپینسری ڈال لی. اچھا پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ یار ڈسپینسری تو ڈال لی لیکن اگر دور پڑے کے جو پیشنٹ ہیں وہ آنا چاہیں تو کیا کیا جائے، تو ایمبولینس ہونی چاہیے. اب ایمبولینس کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ تو یہ چوک پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ہاتھ پھیلا دیتے تھے کہ بابا ایک ایمبولینس کے لیے جتنی بھی خیرات کر سکتے ہو کر دو. تو خیرات مطلب بھیک مانگ کے ایک طرح سے بھکشو بن کے انہوں نے ایمبولینس کے پیسے جمع کیے اور ایک کھٹارا سی ایمبولینس خرید لی. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ہوتے نا کلیم کے ساتھ، یہ اگر ہمارے پاس یہ ہوتا تھے ہم یہ تیر مار لیتے، انسان کی یہ خدمت کر لیتے، اس میں سارے فارمولے جو ہیں وہ بالکل الٹے کر دیے. اب کسی کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اگر میں کسی کی خدمت کرنا چاہوں تو میں کسی بہانے کے پیچھے پناہ لے سکوں. یہ ہے اصل میں ایدھی کا کنٹریبیوشن.
ایدھی صاحب کیا کیا کرتے تھے؟ مطلب ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے میں نے، لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے.
اس کا جواب یہ ہے کہ ایدھی صاحب کیا کیا نہیں کرتے تھے. مثلاً جو لاوارث عورتیں گھروں میں سے تنگ تھیں اور بھاگ جاتی تھیں تو ایدھی صاحب نے ان کے لیے شیلٹر ہوم بنایا. جو بچے جن کا کوئی ماں باپ جو ہیں وہ کسی، بعض لوگ کہتے ہیں گناہ کی پیدائش یا کسی غلطی کا نتیجہ ہے، تو وہ کہتے تھے ان بچوں کو مت مارو. 400 شیلٹر ہومز تھے، ان کے باہر ایک ایک انہوں نے وہ کھٹولا رکھا ہوا تھا، گہوارا جسے کہتے ہیں، کہ اس میں ڈال دو اور ہم انہیں بڑا کریں گے. اس کھٹولے میں جن کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، کئی ایسے بچے ہیں جنہوں نے بڑے ہو کے گریجویشن کیا اور جو اچھے عہدوں پہ بھی گئے اور آج تک یہ نہیں پتا کہ ان کے والدین کون ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس سنگل ہینڈڈلی بنائی. 1800 کے قریب ایمبولینسیں تھیں. کوئی ان کے پاس 45 ریسکیو بوٹس تھیں، 2 ایئر ایمبولینسیں تھیں، قبرستان تھے جو نشہ کرنے والے لوگ تھے ان کی ریہیبلیٹیشن کے انہوں نے سینٹرز بنائے ہیں. مطلب کیا نہیں کیا یہ کچھ.
اگر ان کی ویکتیگت نجی زندگی کی بات کریں تو ان کا اپنا جینے کا انداز کیسا تھا؟
سادہ تھا بھائی. 2 ملیشیا کے جوڑے تھے، ایک وہ پہن لیتے تھے اور دوسرا دھونے کے لیے رکھا ہوا تھا. آخری جو انہوں نے جوتا ہے وہ 20 سال پہلے خریدا تھا، اس میں جو ہے وہ پیون لگے ہوئے تھے، گر گیا تھا تلا والا، یہ تو میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. 2 کمروں کا ایک فلیٹ تھا اور وہ بھی کرائے کا تھا. عموماً جو ان کا ایدھی فاؤنڈیشن کا ہیڈ کوارٹر تھا اس میں ایک سلیب تھا سیمنٹ کا، اس کے اوپر وہ سو جاتے تھے. اچھا جب بھی بیمار ہوتے تھے تو جو خیراتی اسپتال ہے SIUT جو بڑا مشہور ہے یہاں کا، یا تو وہاں جاتے تھے یا پھر سرکاری ہاسپٹل میں چلے جاتے تھے یا اپنا جو شفا خانہ ہے اس میں علاج کروا لیتے تھے. تو مثلا ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، ان کی کیا زندگی تھی؟ یہی زندگی تھی ان کی. اور ویسے اگر آپ چاہیں تو گننے کے ان کا جو اسیٹس ہیں، ان کی جو مالیت ہے وہ 400 روپے کی ہے جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا ایمبولینسوں کی شکل میں اور جو ایری سینٹرز کی شکل میں، شیلٹرز کی شکل میں، اس کا اگر اسیسمنٹ کریں. لیکن خود اس آدمی کا کیا تھا، اس اسیٹس میں کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ اسیٹس اس نے سنگل ہینڈڈلی کریٹ کی ہے. تو اس طرح کا آدمی تھا وہ.
پاکستان کے ورشٹھ پترکار وسط اللہ خان. اگر آپ ایدھی صاحب کی زندگی سے جڑی تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے ہماری ویب سائٹ bbchindi.com پر.
خبر سچ ہے اگر BBC پر ہے.
امریکہ کے ڈیلس شہر میں گولی باری میں 5 پولیس کرمیوں کی ہتیا کے بعد امریکی راشٹرپتی باراک اوباما یوروپ کی اپنی یاترا بیچ میں ہی چھوڑ کر سودیش لوٹ رہے ہیں. انہوں نے سارجنک عمارتوں پر راشٹریہ جھنڈے کو جھکانے کا آدیش دیا ہے. غورطلب ہے کہ لوئیزیانا اور منیسوٹا میں پولیس کے ہاتھوں کالے لوگوں کی موت کے بعد یہ گھٹنا سامنے آئی ہے. حملہور یوک مکا جانسن نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ وہ گورے لوگوں کو مارنا چاہتا تھا اور اس کے نشانے پر خاص طور پر گورے پولیس ادھیکاری تھے. تھوڑی دیر پہلے میں نے گھٹنا کی تازہ جانکاری کے لیے واشنگٹن میں BBC سنواددتا برجیش اپادھیائے سے بات کی.
دیکھیں امریش، یہ شکروار کی شام ہے جب امریکہ عام طور سے جشن کے موڈ میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت دیش کے کونے کونے میں تناؤ کا ماحول ہے. एक तरफ पुलिस हिंसा के खिलाफ काले समुदाय के लोग अटलांटा, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, मिनेसोटा, डेट्रॉयट, वॉशिंगटन डीसी हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां तैनात है, लेकिन दूसरी तरफ ये डर भी है कि डैलस की तरह फिर से पुलिस पर कोई हमला ना हो जाए। देश के दो तीन हिस्सों से पुलिस कर्मियों पर गोली चलाए जाने की खबर आई है। राष्ट्रपति ओबामा अपने यूरोप दौरे से एक दिन पहले ही लौट रहे हैं और अगले हफ्ते डैलस भी जाएंगे। कई शहरों में पुलिस विभाग में अधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया है कि वो ड्यूटी पर दो लोग साथ जाएं। काले समुदाय के कई नेता सामने आए हैं और कह रहे हैं कि पुलिस हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है, लेकिन अमेरिका किस तरह से इस मामले पर बटा है उसका अंदाजा आपको सोशल मीडिया पर जो बयानबाजी हो रही है उससे मिल सकता है। डैलस के मेयर ने लोगों को आश्वासन दिया है कि शहर सुरक्षित है, लेकिन माहौल में इस वक्त तनाव काफी भरा हुआ है।
ब्रजेश, जो शूटर है मिकाह जेवियर जॉनसन, जिन्होंने 5 पुलिस वालों की जान ली, उनके बारे में क्या नई जानकारी सामने आई है?
एक बात जो सामने आ रही है कि हमलावर ने इस हमले को अकेले ही अंजाम दिया। 3 लोग अभी भी हिरासत में हैं और पुलिस ये पता करने की कोशिश में है कि क्या संदिग्ध हमलावर मिकाह जॉनसन कहीं और से भी उन्हें सहयोग मिला था। पुलिस के अनुसार हमलावर अमरीकी फौज में थे, अफगानिस्तान में भी उन्होंने ड्यूटी की थी और डैलस में मानसिक बीमारियों से जूझ रहे बच्चों और वयस्कों के सहायक के तौर पर भी वो काम कर रहे थे और उनके फेसबुक के पन्ने पर काले लोगों के हक की बात की गई है। और पुलिस के अनुसार उनके घर की तलाशी में उन्हें विस्फोटक सामग्री, बंदूकें, गोलियां और युद्ध तकनीक पर एक निजी जर्नल जिसे मैनिफेस्टो कहा जा रहा है वो भी मिला है। और बम विस्फोट में मारे जाने से पहले उसने कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा गोरे पुलिस अधिकारियों को मारना चाहते हैं और वो काले लोगों के खिलाफ जो पुलिस हिंसा है उससे काफी गुस्से में थे, नाराज थे।
वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। और अब भारत का रुख करते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बल और चरमपंथियों के बीच हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक स्थानीय कमांडर बुरहान वानी मारा गया है। यह हिजबुल का पहला ऐसा कमांडर था जिसने अपनी और अपने साथियों की हथियार थामे तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। और अब सीधे चलते हैं श्रीनगर बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर के पास। रियाज, बुरहान वानी की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में क्या ताजा हालात हैं?
जी, बुरहान वानी जाहिर है एक मोस्ट वांटेड हिजबुल कमांडर थे और इनके सर पर 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड मनी भी था, लेकिन पुलिस महानिदेशक और दूसरे सुरक्षा बलों के अध्यक्षों ने कहा है कि ये क्लीन ऑपरेशन था और बिल्कुल आसानी से इंटेलिजेंस इनपुट के बल पे इनको एक मकान में घेर लिया गया और वहां पे न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन जितना ये ऑपरेशन क्लीन था उससे ज्यादा बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए बुरहान की मौत के बाद कश्मीर के हालात को जो है उस स्थिति को
लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या सुपरस्टार स्टेटस का नाजायज फायदा उठाते हैं फिल्मी हीरो? चिंकारा और हिरणों का शिकार हो, फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचलने का मामला, या फिर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप, मशहूर अभिनेता कानून की जद से बार बार कैसे बच जाते हैं? क्या लोकप्रियता से कानून तोड़ने का लाइसेंस मिल जाता है? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 9 जुलाई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
4 अफ्रीकी देशों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका में हैं। शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के 2 दिन के दौरे के पहले दिन उन्होंने मेजबान राष्ट्रपति जैकब जूमा से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। जोहानिसबर्ग में नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका के योगदान को याद किया।
गांधी हेल्ड साउथ अफ्रीका डियर टू हिज हार्ट। महात्मा गांधी मानते थे कि इस भूमि पर एक प्रकार से उनका यहां एक नया जन्म हुआ था।
हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने दक्षिण अफ्रीका में मौजूद पीटीआई के संवाददाता फकीर हसन से बात की और पूछा कि प्रधानमंत्री जी की पहले दिन की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान क्या कुछ हुआ।
पहले दिन सुबह मीटिंग थी प्रेसिडेंट जूमा के साथ, वो तो थोड़ा सा प्राइवेट हुआ था। बाद में यहाँ एक कम से कम 100 CEOs था कंपनीज का, इंडिया सा, साउथ अफ्रीका सा, और जूमा के साथ एक अग्रीमेंट था कि दोनों मुल्कों के लिए तरक्की के लिए ट्रेड बढ़ाना है। क्योंकि पिछले दो साल में कम हुआ था, और उसके बाद वो गया है कॉन्स्टिट्यूशन डील। कॉन्स्टिट्यूशन एक जगह वहाँ गांधी जी और नेल्सन मंडेला जी दोनों ही प्रिजनर थे। आज तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का प्रेमिसेस है। और कल शाम को एक प्रोग्राम था यहाँ पे, साउथ अफ्रीका वेलकम्स मोदी। 10,000 से ऊपर आम आदमी आए थे वहाँ, 2-3 घंटे का प्रोग्राम था।
दूसरे दिन क्या कुछ कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी का दक्षिण अफ्रीका में?
दूसरे दिन पे डर्बन जा रहा है, वहाँ गांधी जी का वो फिनिक्स सेटलमेंट है, वहाँ कुछ लोग को मिलेंगे। और जहाँ रेलवे स्टेशन था, जहाँ गांधी जी का शुरुआत हुआ था सत्याग्रह का, उसको निकाल गया था गाड़ी से। और उसके बाद डर्बन में भी एक कम्युनिटी प्रोग्राम है वहाँ। डर्बन में ज्यादा साउथ अफ्रीका का इंडियन लोग रहते हैं।
दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से भारत के मुकाबले चीन को ज्यादा तरजीह मिलती है, तो मोदी के इस दौरे से और जो एग्रीमेंट वहाँ हुए हैं उससे लगता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे, बढ़ेंगे? भारत को उससे कोई फायदा होगा?
हाँ जरूर, भारत को फायदा होगा। साउथ अफ्रीका का माइनिंग एक्सपीरियंस और दक्षिण अफ्रीका का भी इंडिया का कुछ बेनिफिट है। इंडिया का एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल्स में और आईटी में, तो उसका साउथ अफ्रीका का फायदा होगा। चीन का भी बहुत ही एडवांस है यहाँ साउथ अफ्रीका में। पिछले 5-6 साल में बहुत ही चीनी बिजनेस आया है यहाँ पे, और इंडिया का थोड़ा कम हुआ। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है चीन और इंडिया का, लेकिन इंडिया का रिलेशनशिप बड़ा है चीन का।
ये थे पीटीआई के पत्रकार फकीर हसन। एक बार फिर लौटते हैं उस खबर पे, जम्मू भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर की उस खबर पे। अनंतनाग जिले में सुरक्षा बल और चरमपंथियों के बीच हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक स्थानीय कमांडर बुरहान वानी मारा गया है। हम बात कर रहे थे हमारे संवाददाता रियाज मसरूर से। रियाज, आप बता रहे थे बड़ी चुनौती के बारे में। जी
जी, जाहिर है बुरहान की मौत को जिस तरह से एक क्लीन ऑपरेशन बताया गया, लेकिन एक चुनौती यह है कि अब स्थिति को कैसे संभाला जाए, क्योंकि स्थिति बहुत बिगड़ गई है दक्षिणी कश्मीर में। जाहिर है पिछले 2-3 वर्ष से वहां जब भी कोई चरमपंथी किसी भी मुठभेड़ में मारा जाता है तो बड़ी संख्या में लोग बाहर आते हैं उसके फ्यूनरल में शिरकत करने के लिए, लेकिन ये थोड़ी अलग बात है क्योंकि ये उस ग्रुप का लीडर था बुरहान वानी, जिस ग्रुप को जिस ग्रुप की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पे दिखी गई, बल्कि बुरहान वानी को हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय भी कहा गया। तो इस तरह से अब जो पूर्व कोर कमांडर रहे हैं कश्मीर में सईद अता हसनैन, उन्होंने भी ये बताया है कि ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, इसलिए प्रशासन और सुरक्षा बलों को ये देखना होगा कि क्या वो लोगों को उसके जनाजे में शिरकत करने देंगे या कि पूरा क्लैंप डाउन करेंगे। इस दौरान में पूरा इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है पूरी घाटी में, और अलगाववादी नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है, क्योंकि उन्होंने श्रीनगर और दूसरे जिलों में जो प्रेयर्स इन एब्सेंशिया होती हैं, यानी जनाजा अलग अलग तरीके से वो करने की कॉल दी थी। तो आज जो है वो अलगाववादियों की कॉल पे पहले ही उन्होंने कॉल दी थी कि आज पूरी घाटी में बंद का आह्वान किया जाएगा। तो इस तरह से पूरा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है।
जी, बहुत शुक्रिया रियाज मसरूर इस पूरी जानकारी के लिए। और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। दिलनवाज पाशा अखबारों के बंडल के साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। जी दिलनवाज
जी, आज दिल्ली से प्रकाशित अखबारों में पहले पन्ने पर अमेरिका के डेलस में जो सुरक्षाकर्मियों पर हमला हुआ है उससे जुड़ी खबरें हैं। कई अखबारों ने तस्वीरें भी प्रकाशित की हैं। हिंदी अखबारों में खासतौर से जाकिर नाइक को लेकर जो विवाद है उससे जुड़ी हुई खबरें हैं। दैनिक जागरण लिखता है जाकिर नाइक की बोलती बंद, ये शीर्षक उस खबर पर दिया गया है जिसमें केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के पीस टीवी और उनकी वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। और यह खबर बाकी अखबारों के पहले पन्ने पर भी है। जिक्र करूंगा द इंडियन एक्सप्रेस की एक खास खबर का जिसके मुताबिक स्मृति ईरानी से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा स्मृति ईरानी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेकर विवाद हुआ था। खबरें आई थी कि स्मृति ईरानी ने उनका अपमान किया था बैठक के दौरान। अब इंडियन एक्सप्रेस से उन वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने कहा है कि स्मृति ईरानी को वाइस चांसलर से थोड़ा सम्मान देना चाहिए था, उनका ये कहना है। दैनिक भास्कर में एक खबर है और यह खबर बाकी सारे अखबारों में भी है। देश में पहली बार मोटापा टैक्स लगेगा। केरल सरकार पिज्ज़ा और बर्गर जैसे जंक फूड पर 14.5% का टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। यह खबर बाकी अखबारों में भी है। द हिंदू में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो इलाके हैं जहां पर आफ्सपा लगा हुआ है वहां पर सेना की जो कार्रवाइयां हैं वो जांच से परे नहीं हैं। जहां मुठभेड़ हो रही है उनकी जांच होनी चाहिए। ये ये खबर जो है द हिंदू के पहले पन्ने पर, और द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पहले पन्ने पर खबर है जिसके मुताबिक मुंबई से इस्लामिक स्टेट के साथ जुड़ने की चाह रखने वाले चार युवक, जाकिर नाइक जो इस्लामी प्रचारक हैं उनके बयानों से प्रभावित थे। एक और खबर का जिक्र करना चाहूंगा जो आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, यह है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो अधिकारों के विवाद को लेकर लड़ाई है उसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी आम आदमी पार्टी ने, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आने दें, यानी इनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। और एक और खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है पहले पन्ने पर, आपको याद होगा कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के एक विधायक महिला से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार हुए थे, अब एक और विधायक पर ऐसी ही FIR दर्ज हुई है, बहुत मुमकिन है कि वो भी गिरफ्तार हो जाएं। जिस बुरहान वानी का जिक्र हमने किया है उनकी तस्वीर कई अखबारों में पहले पन्ने पर प्रकाशित है, ये वही तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर उन्होंने AK-47 के साथ जारी की थी। और एक अच्छी खबर किसानों के लिए है, कई अखबारों के पहले पन्ने पर है, देश में मानसून ने जोर पकड़ लिया है, दालों की जो बुआई है उसमें तेजी आई है, द हिंदू भी इसी खबर पर लिखता है। एक तस्वीर भी द हिंदू ने प्रकाशित की है जिसमें ये एक शायद कोई पहाड़ है, खूबसूरत सा नज़ारा है, बाइक पे जो है लोग जा रहे हैं और बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, तो मानसून की दस्तक देने वाली ये तस्वीर जो है द हिंदू ने प्रकाशित की है। कल गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल जो पटेलों के नेता हैं उन्होंने आंदोलन चलाया था उनको जमानत दी थी सशर्त, 6 महीने उन्हें गुजरात से बाहर रहना होगा, ये खबर भी लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। जी अमरीश
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए दिलनवाज। और अब फिल्म समीक्षा की का वक्त हो चला है। इस हफ्ते ईद के मौके पर रिलीज़ हुई सलमान खान की फिल्म सुल्तान, इस फिल्म के निर्देशक हैं अली अब्बास जफर जिन्होंने साल 2014 में गुंडे बनाई थी। फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं अर्णब बैनर्जी जिनसे बात की BBC संवाददाता विदित मेहरा ने।
इस ईद पर तो सबकी पार्टी करवाने आ ही गए हैं सलमान खान, क्योंकि उनकी फिल्म सुल्तान रिलीज हो गई है और ताज़ा ताज़ा देखकर आए हैं हमारे साथ हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी। अर्णब, सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको।
आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।
अब ये बताइए कि सलमान भाई की जो ये ईदी है सुल्तान के रूप में जो दर्शकों तक पहुंची है, कैसी है ये ईदी?
देखिए, सलमान की फिल्म का तो बहुत दिनों से इंतजार रहता है सबको। कोई भी फिल्म सलमान करते हैं तो उनके जो फैंस हैं वो टूटे पड़ते हैं। अब पहले दिन के शो में ही मैंने देख लिया कि किस तरह से लोग उमड़ रहे थे एक दूसरे के ऊपर और खचाखच भरा हुआ था, और जैसे ही सलमान स्क्रीन पे आते थे सीटियां बजती थी, तालियां बजती थी। तो ये एक सलमान खान की फिल्म का एक नज़ारा है। फिल्म कैसी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, सलमान खान की फिल्म के लिए इतनी चाहत है लोगों की कि लोग एक दूसरे पर टूटे पड़ते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि सलमान ने क्या कुछ नया किया है। तो सलमान खान की फिल्म है तो जाहिर है एंटरटेनिंग तो होगी ही, और फाइट्स भी हैं और गाने भी हैं और मसाला है भरपूर।
ना वो आँखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
सुल्तान की अगर बात करें, स्टोरी लाइन की बात करें, तो स्टोरी क्या है?
सुल्तान की स्टोरी है एक रेसलर की जो कि अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों से जूझने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनल इसलिए क्योंकि उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है जो रेसलर थी, आरिफा बनी है, अनुष्का शर्मा बनी है वो किरदार, और आरिफा हुसैन एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप है जो दिल्ली में पढ़ के आई है, अंग्रेजी बोलती है लेकिन उनको रेसलर ही बनना है क्योंकि उनके पिताजी बहुत बड़े रेसलर हैं। उनको प्यार हो जाता है, उससे शादी हो जाती है, लेकिन उसी दौरान सलमान भी बहुत बड़े रेसलर बन जाते हैं हरियाणा में, और वो एक कॉमनवेल्थ से लेके और एशियन चैंपियनशिप सब कुछ जीतने लगते हैं। जब उनकी बीवी प्रेग्नेंट होती हैं वो उसको कहती है कि उनसे छोड़ के ना जाएं, लेकिन वो चले जाते हैं, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी एक अनहोनी होती है और वो टूट पड़ते हैं और उनका अलगाव हो जाता है। तो इसके बाद वो रेसलिंग छोड़ देते हैं लेकिन रेसलिंग उनका पीछा नहीं छोड़ती है। तो कहानी में इमोशन है, ड्रामा है और थ्रिल भी है, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं सलमान खान की मूवी में, फिल्म की गति बहुत फास्ट चलती है और फिल्म में बहुत सारी फाइट्स हैं जो कि हम एक्सपेक्ट करेंगे एक फाइटर की या रेसलर की लाइफ से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पैरेलल ट्रैक पे चलती रहती हैं, जैसे कुछ लोगों का विरोध करना या किसी एक प्रो टेक चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइज करना जिसमें कि सलमान खान को जीतना ही जीतना है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं जो बहुत रोमांच पैदा करती हैं और कहानी उसके बाद एक तरफ हो जाती है, उसके बाद फाइट्स और रोमांच रह जाता है।
जी, तो ओवरऑल आप सुल्तान को कितने स्टार्स देंगे?
देखिए, फिल्म एंटरटेनिंग है, फिल्म में कंटेंट उस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सलमान खान, कई लोगों ने हरियाणवी बोलने की कोशिश करी है, सलमान खान का एक्सेंट कई जगह स्लिप करता है, कई जगह उन्होंने बस माणे थाणे बोलने की कोशिश करी है जो बहुत ऑथेंटिक नहीं है, बट फिर भी फिल्म में मसाला भरपूर है और एंटरटेनिंग है, इसलिए मैं सुल्तान को 5 में से 3 दूंगा।
फिल्म समीक्षा प्रस्तुत कर रहे थे विदित मेहरा। और अब विंबलडन की खबरें सुनिए अपूर्व कृष्ण से।
विंबलडन 2016 अपडेट।
विंबलडन पर लंदन से बीबीसी हिंदी सेवा की विशेष प्रस्तुति में स्वागत है आपका, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। विंबलडन में इस बार वो खिलाड़ी जिसे प्रतियोगिता का सबसे फेवरेट खिलाड़ी समझा जा रहा था, इतना कि लोकल हीरो एंडी मरे होते तो भी शायद आधे से ज्यादा दर्शक मरे नहीं बल्कि अपने फेवरेट खिलाड़ी की जीत की दुआ करते। वो खिलाड़ी जो 8वीं बार विंबलडन चैंपियन बनकर पीट सैंपरास के 7 विंबलडन खिताबों के रिकॉर्ड से आगे जाना चाहता था, रोजर फेडरर इस बार विंबलडन के फाइनल में नहीं पहुंच पाया। कल सेमीफाइनल में फेडरर की इस कोशिश पर विराम लगा दिया कनाडा के मिलोस राउनिच ने। इस बार विंबलडन के फाइनल में आमने सामने होंगे मिलोस राउनिच और एंडी मरे। कल सेमीफाइनल में फेडरर विंबलडन में अपना 11वां सेमीफाइनल खेलने कोर्ट पर उतरे। इससे पहले के 10 मुकाबलों में वे विजयी रहे थे, मगर कल 34 वर्षीय फेडरर से 9 साल छोटे राउनिच ने उनका विजय रथ रोक दिया। तीसरी सीड फेडरर और 6ठी सीड राउनिच के बीच मुकाबला कांटे का रहा। 3 घंटे 25 मिनट तक दोनों खिलाड़ी जूझते रहे। पहला सेट राउनिच ने जीता, दूसरा और तीसरा सेट फेडरर जीते, लेकिन इसके बाद अगले दोनों सेट में राउनिच भारी पड़े और उन्होंने 6-3, 6-7, 4-6, 7-5 जीत दर्ज कर रोजर फेडरर को पहली बार सेमीफाइनल में हार का मुंह देखने पर मजबूर कर दिया। 17 ग्रैंड स्लैम खिताबों के विजेता फेडरर इस हार से बहुत निराश दिखे, खासकर चौथे सेट में अपने 2 डबल फॉल्ट से।
I don't know, something went wrong. Don't know what, can't believe it, a double fault twice, unexplainable for me really.
मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने 2-2 डबल फॉल्ट किए। मुझे दुख है और खुद पर गुस्सा भी आ रहा है। मुझे उन्हें इतने आराम से ये सेट नहीं दे देना चाहिए था। वो जीत के हकदार हैं, वो जीते भी, मगर इसमें मैंने भी उनकी मदद की। रोजर फेडरर के शब्द। उन्हें मात देने वाले मिलोस राउनिच का ये पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल होगा, जिनके सामने अब फाइनल में होंगे दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी ब्रिटेन के एंडी मरे। उन्होंने कल सेमीफाइनल में चेक गणराज्य के टॉमस बेल्डिक को बड़े आराम से सीधे सेटों में 6-3, 6-3, 6-3 से हराकर तीसरी बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई। अब विंबलडन में आज महिलाओं का फाइनल मुकाबला होगा, जहां अमेरिका की दुनिया के पहले नंबर की खिलाड़ी और पिछली बार की विजेता सरीना विलियम्स के सामने होंगी 4थी सीड जर्मन खिलाड़ी एंजेलिक कर्बर। अगर वो आज भी जीतती हैं तो वे स्टेफी ग्राफ के 22 ग्रैंड स्लैम खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी विंबलडन।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
पाकिस्तान के जाने माने मानवतावादी समाजसेवी अब्दुल सत्तार ईदी का निधन हो गया है। वो 88 साल के थे। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि डेलस में 5 पुलिसकर्मियों की जान लेने और 7 अन्य को गंभीर रूप से घायल करने वाले हमले के पीछे एक ही बंदूकधारी था। डेलस में पुलिसकर्मियों पर हमला इस सप्ताह पुलिस के हाथों लुजियाना और मिनसोटा में मारे गए काले लोगों की याद में आयोजित विरोध प्रदर्शन के अंत में हुआ था। हंगरी की सरकार का कहना है कि उसने सर्बिया के रास्ते अवैध प्रवासियों के आगमन को पूरी तरह रोकने के लिए सर्बिया से लगी अपनी दक्षिणी सीमा पर 10,000 पुलिसकर्मी और सैनिक तैनात किए हैं। कोलंबिया में फार्क विद्रोहियों की वरिष्ठ कमांड ने देश के दूरस्थ वन क्षेत्र में मौजूद अपनी गुरिल्ला यूनिटों को भंग करने की धमकी दी है। सीरिया पर नजर रखने वाले एक समूह का कहना है कि 72 घंटे के संघर्ष विराम के अंतिम दिन हुई हिंसा में कम 50 लोग मारे गए हैं। इतालवी विदेश मंत्री पाउलो जेनिटोलिनी ने सुझाव दिया है कि ब्रिटेन संभवतः यूरोपीय संघ से अलग ही ना हो। उनका मानना है कि एक और जनमत संग्रह या संसद के फैसले में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से होने वाले अलग होने वाले फैसले को पलटा जा सकता है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से बस थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया देवाशीष कुमार ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।